लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन के प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera ci stiamo rendendo conto che Dio non ha mai amato avere a che fare con oranti facili.
प्रार्थना की विषय वस्तु में हम इस बात को पाते हैं कि ईश्वर प्रार्थना को सहज रूप में लेने वालों से खुश नहीं होते हैं। मूसा अपनी बुलाहट के प्रथम दिन से ही ईश्वर के साथ एक कमजोर वार्ता में नहीं रहा। ईश्वर जब उसे बुलाते हैं तो वह मानवीय दृष्टिकोण में एक असफल व्यक्ति था। निर्गमन ग्रंथ उसे हमारे लिए मिद्यान में एक पनाह प्राप्त व्यक्ति स्वरूप प्रस्तुत करता है। एक युवा के रूप में उसने अपने लोगों के दुखों का अनुभव किया और उन्हें उत्पीड़न से बचाने की सोची। अपनी भली इच्छाओं के बावजूद उसने इस बात को पाया कि उसके हाथों से हिंसा हुई है जो कि न्याय संगत नहीं है। उसके सपने इस भांति टूट गए। वह अपने में एक आदर्श व्यक्ति नहीं रह गया। वह अपने अवसरों को खो देता और भेड़ों की देखरेख करता है, लेकिन वे भी उसकी अपनी नहीं होती हैं। मिद्यान की मरुभूमि, उस एकांत में ईश्वर उसे जलती हुई झाड़ी में प्रकट होते और उसको बुलाते हैं। संत पापा ने कहा कि मूसा ईश्वर की बातों का विरोध करता है जो उसे अपने लोगों की देखरेख हेतु बुलाते हैं, क्योंकि वह अपने में भयभीत है, वह अपने में अयोग्य है, वह उस ईश्वर के नाम को नहीं जानता। इसराइली जनता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, वह अपने में हकलाता है। इस तरह हम उसमें बहुत से विरोधों को पाते हैं। मूसा के मुंह से निकलने वाली हर प्रार्थना में हम सवाल क्यों को पाते हैं। आप क्यों मुझे भेजते हैं? आप उन लोगों को क्यों मुक्त करना चाहते हैं? प्राचीन विधान की 5 पुस्तकें हमें मूसा को ईश्वर द्वारा फटकारे जाने का हाल प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। यह उसके लिए प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने हेतु बाधक बनता है। ये सारे भय जो उसके हृदय को विचलित कर देती, हम मूसा को हमारी तरह एक मानव के रूप में पाते हैं। हम उसकी कमजोरियों के साथ साथ उसमें अच्छाइयों को भी देखते हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम अपने जीवन में संदेह करते हैं, लेकिन हम किस तरह अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं। ईश्वर मूसा को अपने लोगों के लिए नियमों को निर्धारित करने, अपनी सेवा पूजा करने और घोर रहस्यों के उद्भेदन हेतु एक माध्यम बनाते हैं जो इसराइलियों के जीवन में, विशेषकर उनकी परीक्षा और पापों की घड़ी में उनके अति निकट रहते हैं। वह अपने लोगों की यादों को नहीं खोते। एक महान चरवाहे का यह एक बड़ा गुण है, वह अपने लोगों को नहीं भूलता है, वह अपनी जड़ों से अलग नहीं होता है। इस बात को संत पौलुस अपने युवा शिष्य तीमथी से कहते हैं, अपने माता पिता और नानी की याद करो, अपनी जड़ों, अपने लोगों से संयुक्त रहो।
मोसे è tanto amico di Dio da poter parlare con lui faccia a faccia.
मूसा का ईश्वर के संग मित्रता इस कदर है कि वह उनके साथ आमने सामने बातें कर सकता है। वह अपने लोगों से इस भांति जुड़ा हुआ है कि वह उनके पापों और परीक्षाओं हेतु ईश्वर से प्रार्थना, क्षमा की याचना करता है। मूसा न तो इनकार करता और न ही अपने लोगों का तिरस्कार करता है। यह उनके खून में है। वह ईश्वर की पुकार के अनुरूप आचरण करता है। संत पापा ने कहा कि मूसा को हम एक सत्तावादी निरंकुश नेता के रूप में नहीं पाते हैं। गणना ग्रंथ हमें उसके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहता है, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। अपने विशेषाधिकार स्थिति के बावजूद मूसा कभी भी दीनहीन इसराइली जनता को अपने से तटस्थ नहीं करता जो ईश्वर में भरोसा रखते हुए अपनी यात्रा करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि इस भांति हम मूसा को विशिष्ट रूप में अपने लोगों के लिए ईश्वर से विनय करता हुआ पाते हैं। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास पूरी तरह से अपने लोगों के प्रति पितृत्व की भावना से साराबोर है। धर्म ग्रंथ इसे हमें उसके हाथों को ईश्वर की ओर फैलाए हुए निरूपित करता है, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य एक सेतु का निर्माण कर रहा हो। वह अपने जीवन के सबसे कठिनतम परिस्थिति में भी जब हम इसराइलियों को ईश्वर से विमुख होकर अपने लिए सोने का बछड़ा तैयार करता हुआ पाते हैं, वह अपने लोगों को दरकिनार नहीं करता है। ये मेरे लोग हैं, आपके लोग हैं। वह ना तो अपने लोगों का तिरस्कार करता और ना ही ईश्वर का तिरस्कार करता है। वह ईश्वर से कहता है, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है, इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। मूसा अपने लोगों से तोल मोल नहीं करता है, वह अपने लोगों और ईश्वर के बीच खड़ा सेतु का कार्य करता है। वह अपनी ख्याति हेतु अपने लोगों को बिक्री नहीं करता है। वह ऊंचाई में पहुंचने वाला नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए अपने इतिहास हेतु एक मध्यस्थ है, जिसे ईश्वर अपने कार्यों को पूरा करने हेतु निमंत्रण दिया है। एक सेतु की भांति वह चरवाहों के लिए एक अति सुंदर उदाहरण है, जो सेतुओं का निर्माण हेतु बुलाए गए हैं, और यही कारण है कि चरवाहे सेतु कहलाते हैं। वे ईश प्रजा और ईश्वर के बीच सेतु का निर्माण करने हेतु बुलाए गए हैं, जैसे कि मूसा ने किया। संत पापा ने मूसा के निवेदन प्रार्थना को दोहराते हुए कहा, हे प्रभु, तू उन लोगों के पाप क्षमा कर दे, और यदि तू उन्हें क्षमा नहीं करता तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से मिटा दे, जिसे तूने अंकित किया है। मैं अपने लोगों की कीमत पर अपने को स्थापित नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा,
e questa è la preghiera che i veri credenti coltivano nella loro vita spirituale.
कि यह वह प्रार्थना है जिसे सच्चे विश्वासी अपने आध्यात्मिक जीवन में करते हैं। यद्यपि वे अपने लोगों की गलतियों का एहसास जीवन में करते, वे अपने प्रार्थनाओं में उन्हें दोषी करार नहीं देते, वे उनका परित्याग नहीं करते हैं। इस मनोभाव को हम संतों के जीवन में पाते हैं, जिन्होंने यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करते हुए विश्वासियों और ईश्वर के बीच सेतुओं का निर्माण किया। इस संदर्भ में मूसा यीशु ख्रिस्त का वह महान नबी था जो हमारे लिए निवेदक और मध्यस्थ है। आज भी यीशु ख्रिस्त पिता के बीच हमारे लिए सेतु की भांति हैं। वे हमारी मध्यस्थता करते हुए अपने घावों को पिता को दिखलाते, जो हमारी मुक्ति और मध्यस्थता की कीमत है। मूसा हमारे लिए वे रूप हैं, जिससे हम यीशु ख्रिस्त को हमारे बीच हमारे लिए पिता से निवेदन प्रार्थना करते हुए देखते हैं। संत पापा ने कहा,
मुसे ci sprona a pregare con il medesimo ardore di Gesù, a intercedere per il mondo, a ricordare che esso, nonostante tutte le sue fragilità, appartiene sempre a Dio.
मूसा हमें यीशु की तरह उत्साह से प्रार्थना करने को प्रेरित करते हैं, जहां हम विश्व के लिए प्रार्थना करने हेतु बुलाए जाते हैं। इस तरह हम इस बात की याद करें कि अपनी सभी खामियों के बावजूद विश्व ईश्वर के लिए प्रिय है। सभी चीजें ईश्वर के लिए है, चाहे वे पापी, दुष्ट, अति भ्रष्ट नेता ही क्यों ना हो। यीशु चाहते हैं कि हम सबों के लिए निवेदन करें। दुनिया अपने में बनी रहती और विकसित होती है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति संतगण सारी मानवता हेतु प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम सभी ईश्वर के आभारी हैं। संत पापा ने कहा कि जब हम किसी के प्रति क्रोधित होते और उसे दोषी ठहराने की सोचते, तो हम मूसा की मध्यस्थता की याद करें। क्रोधित होना ठीक है, लेकिन दोषी करार देना उचित नहीं है। जब हमें क्रोध आए तो हम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, यह हमारी सहायता करेगा। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
विशाल है तू महान है तेरी सृष्टि सारा जहान है
तू विशाल
उसे थाम कर अनुभव से
तेरे गाए जो भाव से उसे थाम कर अनुभव से
तू करे उस पे दया
करे उस पे दया
तू दयालु है तू सुजान है
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार 17 जून को संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के प्रेरितिक भवन के पुस्तकालय में आम दर्शन समारोह को जारी रखते हुए सभी श्रोताओं को अपना संदेश दिया। इसके उपरांत संत पापा ने श्रोताओं का अभिवादन कर अंतरात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उसी के अनुसार चलने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने कहा, आज कॉन्शियसनेस अर्थात विवेक का दिन है। जो पुर्तगाली राजनयिक अरिस्टेडिस डी सूसा मेंडेस की गवाही से प्रेरित है, उन्होंने 80 साल पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज का अनुसरण करने का फैसला किया और हजारों यहूदियों और अन्य लोगों की जान बचाई। अंतरात्मा की स्वतंत्रता को हमेशा और हर जगह सम्मान मिले और हर ख्रिस्तीय ईश्वर के वचन द्वारा प्रकाशित एक सही विवेक का साक्ष्य दे सके। और वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने 2015 में संत पापा फ्रांसिस द्वारा बनाए गए परम धर्म पीठ हेल्थ केयर कमीशन में नए सदस्यों की नियुक्ति की। कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने जून 20 से जून 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए कलीसिया के सार्वजनिक कानूनी व्यक्तियों को स्वास्थ्य क्षेत्र की गतिविधियों के लिए हेल्थ केयर कमीशन के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया। आयोग का निर्माण संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2015 में कलीसिया से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल संगठनों और कलीसियाई संगठनों को उनके वित्त का प्रबंधन करने और उनके मिशन को सही तरीके से करने में मदद करने के लिए किया गया था। इसमें कलीसिया के न्यायिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य प्रणालियों की स्थिरता का पता लगाने और कलीसिया के सामाजिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए परिचालन स्थिरता रणनीतियों को तैयार करने के लिए सामान्य अध्ययन का जनादेश है। वाटिकन हेल्थ केयर फंड FAS के अध्यक्ष मोनसिनियोर लुइजी मिस्टो को पोंटिफिकल हेल्थ केयर कमीशन के अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की गई है। आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं: समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु बने विभाग के उप सचिव सेगुंडो तेजानो मनुओज, मिलान के पौत्र हृदय के कैथोलिक विश्वविद्यालय में संवैधानिक कानून के प्रोफेसर रेनाटो बाडुइजी, वाणिज्य कानून के प्रोफेसर एवं वकील प्रोफेसर जोवानी बारबरा, टैक्स मजिस्ट्रेट प्रोफेसर सेवारियो कापुलुच्चो, कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ हेल्थ वर्कर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फैब्रिसियो सैलानी, परामर्श और संस्थागत संबंध के क्षेत्र में उद्यमी डॉक्टर मौरिसियो गैल्लो। कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने अपनी सेवा के लिए आयोग से बहिर्गामी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी ने सक्षमता और उदार उपलब्धता के साथ अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। उधर बांग्लादेश चित्तागोंग के महाधर्माध्यक्ष कोस्टा 13 जून को कोविड-19 बीमारी के कारण ढाका के अस्पताल में भर्ती हैं। कैथोलिक समुदाय धर्माध्यक्ष के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रही है। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित बांग्लादेश के कैथोलिक बुजुर्ग पुरोहितों में महाधर्माध्यक्ष मोसेस कोस्टा पहले व्यक्ति हैं। महाधर्म प्रांत के विकर जनरल फादर लियोनार्डो रेबेरो ने बताया कि शनिवार को महाधर्माध्यक्ष कोस्टा को चित्तागोंग से ढाका हेलीकॉप्टर से लाया गया। फादर ने सभी धर्म प्रांतीय पुरोहितों, धर्म संघियों, धर्म बहनों और सभी कैथोलिक विश्वासियों से महाधर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करने की अपील करते हुए बताया कि महाधर्माध्यक्ष मोसेस को गंभीर बीमारी की हालत में 13 जून को ढाका के स्क्वायर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराते समय कोविड-19 परीक्षण के लिए खून लिया गया, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आई और दुख की बात है कि वे कोविड-19 की बीमारी से ग्रसित हैं। उधर पाकिस्तानी कलीसिया के अधिकारियों ने स्थानीय पत्रिकाओं में नौकरी के विज्ञापन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की, जिसमें विशेष रूप से गैर मुसलमानों के लिए सफाई की नौकरी की पेशकश की गई है। कलीसिया के अधिकारियों ने अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभावपूर्ण नौकरी के विज्ञापन के प्रकाशन पर पाकिस्तान की सिंध सरकार के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है। राज्य नगर निगम पश्चिम कराची ने 1 जून को स्थानीय समाचार पत्रों में विभिन्न श्रेणियों की 28 नौकरियों की घोषणा की। हालांकि इसने विशेष रूप से गैर मुस्लिमों के लिए सफाई संबंधी नौकरियों को आरक्षित कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कराची महाधर्म प्रांत के विकर जनरल फादर सालेह डिएगो ने अल्पसंख्यक मामलों के सरकार के प्रतिनिधि नावेद एंटोनी से मुलाकात कर आपत्तियों को व्यक्त किया और कानून निर्माता से इस मामले को देखने का अनुरोध किया। फादर डिएगो ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि सरकारी विज्ञापनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत पहुंचाया है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ओपन डोर्स यूएसए के अध्ययन अनुसार पाकिस्तान के ईसाई अल्पसंख्यक देश की स्वच्छता कार्य बल का 80% हिस्सा बनाते हैं। ईसाई अल्पसंख्यक पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का मात्र 1.6% हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में कई कैथोलिक संस्थाएं इस साल की शुरुआत में लंबे समय तक जंगलों में लगे भयानक आग से प्रभावित लोगों को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने वाले समूहों के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की कलीसिया ने प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने वाली कैथोलिक एजेंसियों के लिए समन्वय बिंदु के रूप में काम करने के लिए फरवरी में कैथोलिक आपातकालीन राहत ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत की। मंगलवार को सीईआरए ने घोषणा की कि 15 कैथोलिक संगठनों ने इस वर्ष के राष्ट्रव्यापी बुश फायर से प्रभावित लोगों की मदद करने के अपने प्रयासों में समर्थन करने के लिए धन प्राप्त किया है। विदित हो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से 2019 और 2020 के जंगलों में आग लगने के दौरान झुलस गए थे, जो ब्लैक समर के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।